आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
SBS हिंदी के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये है 18 फरवरी 2026 की एक ढलती हुई शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहद खुश होंगे। आज का SBS हिंदी का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं इस धरती के पूर्वजों गैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करती हूँ। मैं उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक प्रणाम करती हूँ जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है। दोस्तों, मेरे पास आज दो दो तोहफे हैं। भाई, अभी तक हम एक मूवी कॉन्टेस्ट चला रहे थे और आज मेरे पास उस मूवी कॉन्टेस्ट के विजेताओं के नाम हैं। इस पर चर्चा होगी कार्यक्रम के बीच में। इसके अलावा मेरे पास है आपके लिए एडिलेड में होने वाले T20 मैच के पासेस भी। आपको मुझे फिर से वही बताना है कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम की कौन सी महिला खिलाड़ी ऐसी हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं और क्यों, और आप जीत सकते हैं एडिलेड में होने वाले T20 मैचेस के पासेस। तो ये तो थी हमारे गिव अवेज की जानकारी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई कार्यक्रम में आज क्या कुछ रहेगा। संक्षिप्त समाचार के बाद आपके लिए लेकर के आएंगे एक खास खबर ACCC द्वारा कोल्स पर किए जा रहे एक मुकदमे को लेकर के। इसके बाद रहेंगी भारत की बड़ी खबरें और फिर करेंगे एक विशेष चर्चा स्कैनलिन से आई एक रिपोर्ट की जो कि बात करती है ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों के अपनेपन के एहसास की। इसके आगे चलेंगे और अतीत की गलियारों में थोड़ा सा उतरते हुए सुनेंगे अमीन सयानी से हुई SBS हिंदी की पुरानी बातचीत। तो ये सब कुछ बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड रेडियो डे का एक हफ्ता अब भी जारी है और हम चाहते हैं कि आपको अच्छी अच्छी खबरें सुना सके। इसके अलावा रहेंगे आपके संदेश, आपकी फरमाइशें, क्योंकि रहेगी अंत में गीतों की रेलगाड़ी भी। अगर कोई गीत सुनना चाहते हो तो मुझे जरूर बताइए। एडिलेड में होने वाले T20 मैच के पासेस जीतने के लिए जरूर बताइए कि भाई भारतीय महिला क्रिकेट टीम में आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है और क्यों। नंबर वही है 04397997667। जब तक आप संदेश भेज रहे हैं, आइए मैं आपको सुनाती हूँ आज के संक्षिप्त समाचार। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। वन नेशन की नेता पॉलीन हैंसन ने मुस्लिम समुदाय को लेकर अपनी विवादित टिप्पणियों पर आंशिक माफी जताई है, लेकिन इस्लामी संगठनों की आलोचना को खारिज कर दिया है। सोमवार 16 फरवरी को दिए गए एक इंटरव्यू में सेनेटर हैंसन ने कहा था कि कोई अच्छा मुसलमान नहीं होता और यह भी संकेत दिया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया में इस धर्म के और अनुयायियों को आने दिया गया तो भविष्य की पीढ़ियों पर असर पड़ेगा। इन बयानों पर इस्लामी समूहों के साथ साथ लेबर और कोएलिशन नेताओं ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए इन्हें नकार दिया था। अब सेनेटर हैंसन ने ABC से कहा है कि वे अपने पहले दिए बयान में विश्वास नहीं रखती। ऑस्ट्रेलिया के रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सिवरमन ने भी इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए हैंसन से बयान वापस लेने और मुस्लिम ऑस्ट्रेलियाइयों से औपचारिक माफी की मांग की है। वहीं नेशनल इमाम्स काउंसिल के प्रवक्ता बिलाल राउफ ने ABC से कहा कि हैंसन का रुख देश के हित में नहीं है। दूसरी ओर नए आंकड़े बताते हैं कि देश में वेतन वृद्धि महंगाई की रफ्तार से पीछे रह गई है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के दिसंबर तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक साल भर में वेतन 3.4% बढ़ा, जो पहले से 3.3% पर बढ़ रहा था। हालांकि ये बढ़ोतरी 3.8% की मुद्रास्फीति दर से कम है जो 2025 के अंतिम महीनों में बढ़ी थी। सितंबर 2023 के बाद ये पहला मौका है जब वेतन वृद्धि महंगाई से नीचे है। रिपोर्ट के अनुसार इस तिमाही में वेतन वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस सेक्टर का रहा है। इसी बीच फेडरल सरकार ने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में मंजूर की गई बढ़ोतरी का बचाव किया है। इसे निजी अस्पताल क्षेत्र को सुचारू रखने के लिए जरूरी बताया गया है। नए बदलावों के तहत 1 अप्रैल से प्रीमियम 4.41% बढ़ेंगे। ये पिछली साल की 3.73% बढ़ोतरी से ज्यादा है और 2017 के बाद सबसे बड़ी सालाना वृद्धि मानी जा रही है। विपक्ष स्वास्थ्य प्रवक्ता एन रस्टन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए ये कहा कि इससे महंगाई से जूझ रहे परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि फेडरल स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर का कहना था कि अस्पताल सेवाओं की बढ़ती लागत को देखते हुए ये बढ़ोतरी आवश्यक थी। वहीं विपक्ष के नए नेता एंगस टेलर ने अपनी नई फ्रंट बेंच टीम का ऐलान किया है, जिसे वे कोएलिशन की अगली पीढ़ी की टीम बता रहे हैं। टिम विल्सन को छाया कोषाध्यक्ष पद, डिप्टी लीडर जेन ह्यूम को एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और डैन टीहन को मैनेजर ऑफ ऑपोजिशन बिजनेस बनाया गया है। कंजर्वेटिव खेमे से सारा हैंडरसन, जेसिंटा नापेजिम्पा प्राइस और एंड्रू हेस्टी की वापसी हुई। क्लेयर शैंडलर को शैडो फाइनेंस मिला है। सारा हैंडरसन अब कम्युनिकेशंस पोर्टफोलियो संभालेंगी। मिकेला कैश शैडो अटॉर्नी जनरल और जेम्स पैटरसन विपक्ष में रक्षा प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाएंगे। सरकारी खर्च में कटौती पर जोर देते हुए टेलर ने कहा कि उनकी टीम देश को आगे ले जाने के लिए तैयार है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेस्ट बैंक में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की इजराइल की योजनाओं की विश्व भर में निंदा की जा रही है। 85 देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त बयान में कहा गया कि वेस्ट बैंक में इजराइल की कथित गैर कानूनी उपस्थिति को बढ़ाने वाले एक तरफा फैसलों और कदमों की कड़ी निंदा की जाती है। बयान में यह भी कहा गया कि ऐसे कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजराइल की जिम्मेदारियों के खिलाफ हैं और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में जर्मनी, फ्रांस, चाइना और रशिया शामिल हैं, जबकि अमेरिका ने इस बयान में हिस्सा नहीं लिया। और अंत में खबरें भारत से। भारत में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। मतदान 16 मार्च को होगा, जबकि उम्मीदवार 5 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, 6 मार्च को स्क्रूटनी और 9 मार्च तक नामांकन वापसी की आखिरी तारीख रहेगी। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया 20 मार्च तक समाप्त कर ली जाएगी। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6, पश्चिम बंगाल और बिहार में 5-5 सीटों पर चुनाव होगा। ओडिशा में 4, असम में 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना में 2-2, जबकि हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर मतदान किया जाएगा। इसी के साथ 18 फरवरी 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। संक्षिप्त समाचार के बाद अब विस्तार से बात करते हैं ACCC द्वारा किए जा रहे कॉल्स पर एक मुकदमे की। भाई ACCC उपभोक्ता निगरानी संस्था है ऑस्ट्रेलिया की, और उनका कहना है कि कॉल्स ने अपने डिस्काउंट के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। क्या ये पूरा मामला, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया की उपभोक्ता निगरानी संस्था ने सुपरमार्केट चेन कोल्स के खिलाफ फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। ACCC का आरोप है कि कोल्स ने कई उत्पादों पर छूट को लेकर ग्राहकों को गुमराह किया। ये मामला उपभोक्ता कानून पर व्यापक असर डाल सकता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं वृषाली जैन को, और आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को अब विस्तार से। ये नारा सुनने में काफी साधारण लग सकता है, लेकिन सुपरमार्केट चेन कोल्स अब फेडरल कोर्ट में अपनी छूट संबंधी नीतियों का बचाव कर रही है। ऑस्ट्रेलिया प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग का आरोप है कि घरेलू सामान की कीमत तय करने के तरीके में कोल्स ने पूरी सच्चाई नहीं बताई है। कोल्स का कहना है कि उसकी पेश की गई प्रमोशनल छूटें वास्तविक थी और कीमतें महंगाई के दबाव से प्रभावित थी।
दिस इज द केस ऑफ द सेंचुरी।
एलन Ken Fells ACCC के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं.
It affects millions of Australian consumers and households in hundreds of stores around Australia on essential goods and services and groceries.
उनका कहना है कि कोल्स पर सैकड़ों मिलियन डॉलर के जुर्माने लग सकते हैं, साथ ही कंपनी की साख को भी भारी नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि क्लास एक्शन की संभावना भी बन सकती है.
In some ways it's complex, in other ways it's a question simple of whether Coles has been fair dinkum, whether all those apparent price reductions that we see daily are true ones, or whether they just put the price up for a brief time, took it back to the original level, and claimed that it was a bargain and a discount.
University of Melbourne की law professor Jeannie Marine Patterson समझाती हैं कि Coles अपने पक्ष का बचाव किस तरह से कर सकता है.
Coles, on the other hand, will effectively be arguing that, well, it's a supermarket, it's entitled to increase prices. In fact, it will say it has held prices on the particular products down for a long period of time to look after consumers. At some point, it had to raise the prices, and it did raise the prices, and subsequently it discounted them, but the ticket on those prices was strictly accurate.
Patterson का कहना है कि ये एक अहम परीक्षण मामला है, जिससे स्पष्ट होगा कि उपभोक्ता कानून के तहत अदालतें भ्रामक आचरण की व्याख्या कैसे करती हैं.
So the court will be asked to choose between an approach to the legal prohibition that is based on the expectations created in consumers, that's the ACCC's argument, and the strict information that was on the price ticket, that's effectively Coles' argument.
अदालत में 16 फरवरी को पेश किए गए एक उदाहरण में 1.2 किलोग्राम के कुत्ते के गीले भोजन का एक कैन शामिल था, जिसकी कीमत लगभग 10 महीनों तक $4 रही. इसके बाद कोल्स ने कीमत एक हफ्ते के लिए बढ़ाकर $6 कर दी, फिर उसे घटाकर $4.50 कर दिया और इसे डाउन डाउन छूट के रूप में प्रचारित किया. ये ACCC द्वारा पेश किए गए 245 उदाहरणों में से एक है. प्रोफेसर पैटरसन का कहना है कि अदालत का फैसला अन्य रिटेलरों पर भी प्रभाव डाल सकता है.
If the ACCC is successful, they'll be able to impose a significant penalty on supermarkets for misleading consumers for conduct that took place a while ago, that will be act as a real deterrent.
हालांकि वे इस बात पर जोर देती हैं कि उपभोक्ता निगरानी संस्था को अभी ये मामला जीतना बाकी है.
I don't think it's in the bag. I think the conduct was bad, but I don't think it's in the bag yet.
इससे पहले 2024 में भी अन्य सुपर चेन्स के साथ साथ कोल्स प्राइस गाउजिंग के मामले में भी नामित हुआ था. तब SBS हिंदी से प्रोफेसर राकेश गुप्ता ने अपनी बातचीत में प्राइस गाउजिंग को कुछ यूं समझाया था.
इससे प्राइसेस का जो है अनैतिक तौर पे बढ़ना.
जी.
अब इस अनैतिक जो है वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसको अनैतिक क्यों कहते हैं. अगर कानूनन हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में प्राइसेस को बढ़ाने पे कहीं कोई पाबंदी नहीं है. कोई भी बिजनेस जो है अपनी प्राइसेस कभी भी बढ़ा सकता है, जब तक कि वो अपनी प्राइसेस इंडिपेंडेंटली बढ़ाए, दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर नहीं बढ़ाए तो ठीक. अगर वो दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर अपनी प्राइस बढ़ाता है तो वो कानून जो है गलत है. अब प्राइस तो बढ़ेगी, अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन हो रहा है तो प्राइसेस बढ़ेंगी. और दूसरी चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये देखने की है कि फ्री मार्केट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हम मानते हैं कि फ्री मार्केट मॉडल है, तो कंपनीज का काम है या तो प्रॉफिट बढ़ाएं अपनी जो है कॉस्ट कम करके
जी,
या प्रॉफिट बढ़ाएं अपनी प्राइस बढ़ा के, या प्रॉफिट बढ़ाएं मार्केट बढ़ा के, क्योंकि उनको जो है वो अब जवाबदेह है अपने शेयर होल्डर्स को
जी,
तो उनको तीनों में से कुछ ना कुछ करके अपना प्रॉफिट बढ़ाना है.
एक बार फिर कीमतों को अनैतिक रूप से या गुमराह करके बढ़ाने का मामला सामने है. ACCC के इस मुकदमे की सुनवाई 10 दिनों तक चलने की उम्मीद है. SBS न्यूज से टी मिशेल और टॉम स्टेनर की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वैशाली जैन ने. और इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बाद वक्त कार्यक्रम के पहले अंतराल का। अंतराल के उस पार करेंगे भारत की बड़ी खबरों की चर्चा। इसके अलावा मैंने आज आपसे पूछा है कि भाई भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में ऐसी कौन सी खिलाड़ी हैं जो आपको बहुत पसंद हैं और क्यों। आप मुझे अपना संदेश भेज सकते हैं 04397997667 पर। और एडिलेड की तरफ से हमारे जो लिसनर्स हैं, श्रोता हैं, उनके लिए इसका जवाब देना और भी खास हो सकता है, क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप जीत सकते हैं एडिलेड में होने वाले T20 मैच के पासेस। तो मुझे जरूर बताइए कि आपको इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम में कौन सी ऐसी प्लेयर है जो बहुत पसंद है, 04397997667 पर, और आप जीत सकते हैं इस मैच के पासेस भी। आगे करेंगे और भी बहुत सारी चर्चाएं, जुड़े रहिए SBS हिंदी पर विशाली के साथ। मैं बस यूं गई और यूं आई, जानते तो हैं आप, बस आती हूं, ठीक है, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृशाली को, और भाई मेरे पास संदेश आया है विकास अहूजा जी का, जिन जो कह रहे हैं कि उन्हें स्मृति मंदाना पसंद है। देखिए, अगर आप एडिलेड में होने वाले T20 मैच के पासेस जीतना चाहते हैं तो आपको हमें ये भी बताना होगा कि आपको कोई खिलाड़ी क्यों पसंद है, उस पसंद के बारे में एक सेंटेंस आपको लिखना होगा कि क्यों आपको वो पर्टिकुलर खिलाड़ी पसंद है। और नंबर वही है 04397997667। ये जो हम गिव अवे कर रहे हैं ये सिर्फ दो दिन चलेगा, यानी एडिलेड T20 मैच के पासेस आप आज और कल जीत सकते हैं, क्योंकि 20 तारीख को हम विजेताओं के नाम घोषित कर देंगे। विजेताओं के नाम की चर्चा चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास दो दीवाने इस शहर में नाम की फिल्म का जो गिव अवे हम कर रहे थे उसके विजेताओं के नाम भी आ गए हैं। भाई 5 पासेस थे हमारे पास देने के लिए, जिनके विजेता हैं ओम प्रकाश जी, जेमी यू जी, नीना शाह जी, तेज प्रकाश जी और चेतन शाह जी। आप सबको ईमेल्स पर, जो भी ईमेल आपने हमें भेजे थे उन ईमेल्स पर आपके पासेस मिल जाएंगे, तो इसकी बहुत 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 बधाइयां। और अब आइए सुनते हैं भारत की बड़ी खबरें, जिन्हें लेकर के आते हैं विश्वरत्न श्रीवास्तव हर बुधवार हमारे लिए दिल्ली से। आगे की चर्चा आगे करूंगी।
भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प दोहराया है। मंगलवार को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के बीच व्यापक चर्चा हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा उत्पादन में व्यापक सहयोग समेत 21 क्षेत्रों में सहयोग की घोषणा की गई। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकलेगा। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
दोनों देशों की साझेदारी को वैश्विक स्थिरता और दुनिया की प्रगति के लिए बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं,
आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। हम ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC और ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट सुनिश्चित करेंगे और मल्टीलेटरलिज्म, डायलॉग और डिप्लोमेसी से स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों को बल देते रहेंगे।
भारत फ्रांस संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी पीयूष श्रीवास्तव कहते हैं,
दिस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इज डीपनिंग has deepened considerably, and during this visit there has been a lot of discussion on deepening areas of defense, space, civil nuclear and counter-terrorism. And one of the defining feature of this visit has been strong focus on people's ties. With France, we have been collaborating very closely, and our partnership with France has been second to none.
नई दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों और प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी से सरकार गदगद है। सरकार का कहना है कि AI क्षेत्र में बड़ा निवेश आने वाला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में बताया।
We can see the enthusiasm, it's palpable. We can see the interest of the global leaders, that's visible. We can see the investment opportunity, that is today countable. It's going to be probably over next 2 years, more than $200 billion worth investment is likely to come. We can see the commitment of VCs in our deep tech startups. That's clearly committed. We can see that interest in making AI accountable to the society.
AI के सही उपयोग पर जोर देते हुए अश्वनी वैष्णव कहते हैं,
We will try to create a consensus among the global leaders about the good use, the proper use, the right use of AI so that AI can be used for the benefit of the humanity while we can contain the harms which may come from improper use.
AI summit के पहले दिन अव्यवस्था को लेकर काफी खबरें आई थी, जिसके बाद अश्वनी वैष्णव ने इसके लिए माफी मांगी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर सरकार को खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस ने इसे विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि खराब करने वाला बताया। इस समिट में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के आने पर सस्पेंस बना हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स में बिल गेट्स का नाम आने के बाद सरकार बिल गेट्स को दिया गया निमंत्रण वापस ले सकती है। हालांकि अभी इस बारे में कोई आधिकारिक स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बिल गेट्स को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आने पर तंज कसा।
पूरे विश्व में जहां एप्स्टीन पर सब लोग थू-थू कर रहे हैं, एप्स्टीन के गिरोह पर सब लोग थू-थू कर रहे हैं, वहीं हमारे यहां क्या हो रहा है, ये मैंने आपको अभी दो उदाहरण दिए। बिल गेट्स भी सोच रहे होंगे मेरा बचाव आप कौन करेगा, किसी ने सलाह दे दी होगी पीआर कंपनी ने कि आप हिंदुस्तान चले जाइए, बचाव ही बचाव है, वही हो रहा है। और आज सुबह से सोर्सेज कह रहे हैं कि बिल गेट्स को डिस इनवाइट कर दिया, सोर्सेज कह रहे हैं, बिल गेट्स कह रहे हैं मैं तो आऊंगा, मैं तो भाषण दूंगा।
प्रधानमंत्री मोदी पर एप्स्टीन फाइल के खुलासों से डरने का आरोप पवन खेड़ा लगाते हैं।
यही तो हम जानना चाहते हैं कि बिल गेट्स से डरते हैं आप, एप्स्टीन के जो बाकी गिरोह के मेंबर्स हैं उनसे डरते हैं आप। डर ऐसा कि बिल गेट्स को यह हिम्मत आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेस द्वारा जो खबरें चलाई जा रही हैं आपके चैनल्स पे, वो तुरंत उनको काउंटर करता है कि नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं कीनोट एड्रेस दूंगा, मैं सारा कार्यक्रम भारत में वैसा ही करूंगा जैसा कि पहले निश्चित था। ये डर नहीं है तो और क्या है। डर छोड़िए, ये तो हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री डरते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक बाल पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है, और जब इकबाल मिट्टी में मिल जाता है फिर देश की साख पर बात आ जाती है। अब देश की साख पर बात आ गई।
AI समिट और राजनीति के बाद अब बात सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव की। सोशल मीडिया से होने वाले फायदे और नुकसान का आकलन सरकार कर रही है। खासतौर पर छोटे बच्चों पर इसके लत की खबरों को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह उम्र आधारित प्रतिबंध लगा सकती है। नाबालिग बच्चों को ऑनलाइन खतरों सोशल मीडिया की लत और भ्रामक जानकारी से बचाने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया सहित कुछ देशों में इस तरह के नियंत्रण पहले ही लगाए जा चुके हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
नमस्ते बहनों और भाइयों,
रेडियो सिलोन की ये यादगार सदाबहार आवाज बहनों और भाइयों कहकर एक अलग परंपरा बनाने वाले अमीन सयानी।
अनीता बरार का नमस्कार।
अरे वाह वाह, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये जो दो देश हैं ये मेरे इतने प्यारे देश हैं और मैं गया ही नहीं। संगीत हमारी परंपरा, हमारे ट्रेडिशन का, हमारी तहजीब का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा था। ऑस्ट्रेलिया से तो हमारा बड़ा पुराना नाता है।
इतना पॉपुलर हो गया कि म्यूजिक डायरेक्टर्स की तनख्वाहें इस प्रोग्राम पर मुनासिर होती थी कि कितने गाने बजे, उनके किस पायदान पर बजे, उस हिसाब से उन्हें काम मिलता था और पैसे मिलते थे। टीवी के आने से भी दुनिया भर में कहीं रेडियो मरा नहीं, रेडियो उसी तरह चल रहा है, थोड़ा बदला हुआ है। ये दोनों इंटरव्यूज मेरे जीवन के बेहतरीन इंटरव्यूज हैं।
तो ये दो लोगों को मैं मिस कर गया, इसका मुझे बड़ा बड़ा अफसोस है।
कौन से थे वो पसंदीदा इंटरव्यू और किन कलाकारों का इंटरव्यू ना कर पाने का अमीन साहब को मलाल रहा, और कैसे होता था बिना का गीतमाला सरताज गीत का चयन, और क्या था ऑस्ट्रेलिया का नाता रेडियो सिलोन के साथ? जानिए इन सब सवालों का जवाब, और अमीन सयानी के साथ जानिए उनके जीवन के कुछ वो पहलू जो शायद आप ना जानते हों। इस लंबी बातचीत को हमने रिकॉर्ड किया था 2013 में और आपके लिए इसे दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं 5 भागों में।
तो भाई मैं क्या बताऊं, अब कार्यक्रम में आगे अमीन सयानी के ऊपर क्या चर्चा होगी ये आपको अनीता जी ने खुद ही बता दिया है। तो इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार करेंगे प्रवासी समुदायों में अपनेपन की यानी बिलोंगिंग की जो एक भावना है उस पर चर्चा। क्या है ये पूरी खबर, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा एक अंतराल भर के लिए। अंतराल के बाद फिर हाजिर होती हूँ, लेकिन आपके संदेश मेरे पास लगातार आ रहे हैं। मैं आपको बहुत फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ और काफी साफ तरीके से बता देना चाहती हूँ कि एडिलेड T20 के जो आप एंट्रीज भेजेंगे मैच के पासेस के लिए, उसके लिए मतलब आइडियली आपको एडिलेड में होना चाहिए, ताकि आप या तो आप, क्योंकि अगर आप एडिलेड में है नहीं तो आप पासिस का क्या कीजिएगा। तो अगर या तो आप एडिलेड जा सकते हैं मैच के लिए या आप एडिलेड में हैं तो आपके लिए ये गिव अवे बेहतर होगा। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में आपकी पसंदीदा खिलाड़ी कौन है और क्यों? आपने बड़े अच्छे अच्छे संदेश भेजे हैं जो फिर से मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, लेकिन एक अंतराल के बाद। नंबर हमारा 04397997667 है। कार्यक्रम के अंत में रहेगी एक गीतों की रेलगाड़ी भी, तो अगर आप उसके लिए संदेश भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजिए और मुझे बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं। 04397997667 हमारा संदेश का नंबर स्थाई है। इसके अलावा जो एडिलेड T20 का गिव अवे पास है वो हम आज और कल ही दे रहे हैं, 18th और 19th को। 20 तारीख को हम विजेताओं के नाम घोषित कर देंगे, 21 तारीख को मैच है। तो ये तो थी सारी जानकारी। अब वैशाली ले रही है एक छोटा सा अंतराल, अंतराल के उस पार चर्चा स्कैनलन रिपोर्ट की। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर, आप सुन रहे हैं वैशाली को। भाई मेरे पास पीयूष शाह जी का संदेश है व्हीलर्स हिल से, जो कह रहे हैं कि नमस्ते वैशाली जी, स्मृति मंदाना बिकॉज शी इज एन एक्सलेंट ऑलराउंडर, ग्रेट ओपनर विद इमैक्युलेट डिटर्मिनेशन। और वैसे ये सच भी है, स्पोर्ट्स में या किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी काम में जिंदगी के, अगर आपके पास दृढ़ निश्चय नहीं है तो आप उसे कैसे पूरा कीजिएगा।
और मेरे पास विकास आहूजा जी का संदेश आया है कि उन्हें स्मृति मंदाना इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी बल्लेबाज हैं एंड ऑलवेज प्लेज अ क्रूशल रोल इन क्रिटिकल सिचुएशन एंड मैचेस फॉर द विक्ट्री ऑफ द इंडियन टीम। इसके अलावा मेरे पास संदेश आया है रचना शर्मा जी का, जो कह रही है कि आई लाइक जमाइमा रॉड्रिगेज because she is a match winner. She took India to finals in her match winning performance, including the semi-finals. Her consistency is her great attribute. Dekha, kitni pyari pyari baatein aap log likhte hain. Aur tickets ya passes ek taraf hain, lekin jab ye sandesh bhartiya mahila cricket team ko milenge ya unme se kisi koi sun ke unko batayega, to kitna utsahvardhan hoga na unka. खैर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपके संदेश अगर आप भेजना चाहते हैं एडिलेड के T20 मैच की एंट्री के लिए, जो हमारे पास पासेस हैं, अगर आप उन्हें जीतना चाहते हैं तो आप हमें ये बता सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट में आपको कौन सी खिलाड़ी बहुत पसंद है और क्यों। 04397997667 हमारा नंबर है। और अब आइए बढ़ते हैं स्कैनलन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट की तरफ। भाई, इस नई रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेजी से बढ़ते प्रवासी समुदायों, जिनमें चाइना, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इराक और फिलिपिनी मूल के लोग शामिल हैं, में अपनेपन की भावना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझने का प्रयास किया गया है। और गृह मंत्रालय विभाग के सहयोग से किए गए इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रवासियों के लिए सार्थक रोजगार और मजबूत सामुदायिक रिश्ते ऑस्ट्रेलिया में उनके अपनेपन की भावना को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। क्या है ये पूरी खबर, आइए सुनते हैं।
नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। स्कैनलन फाउंडेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है मल्टी कल्चरलिज्म इन फोकस, माइग्रेंट सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो इस नई रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेजी से बढ़ते प्रवासी समुदायों में अपनेपन की भावना को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच की गई है। और इन समुदायों में आते हैं वो समुदाय जो आते हैं चाइना से, भारत से, नेपाल, पाकिस्तान, इराक और फिलीपींस से। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स द्वारा आयोजित इस रिपोर्ट में स्कैनलन फाउंडेशन के शोधकर्ताओं ने पाया है कि सोशल कनेक्शन और मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट यानी मायने रखने वाले रोजगार ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासियों की अपनेपन की भावना को मजबूत करते हैं। इस अंश में हम बात कर रहे हैं ट्रिश प्रेंटिस से, जो स्कैनलन फाउंडेशन में सीनियर रिसर्चर हैं और इस अध्ययन की मुख्य लेखिका हैं। वेलकम टू SBS हिंदी प्रोग्राम ट्रिश। सो लास्ट ईयर स्कैनलन रिपोर्ट ऑन सोशल कोहेजन शोड दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाज डिक्लाइनिंग अक्रॉस जनरेशन। नाउ दिस न्यू रिपोर्ट गोज इनटू डीपर स्पेसिफिक, व्हाट फाइंडिंग्स स्टूड आउट मोस्ट दिस टाइम?
So this report is the first in a new series of reports which we'll be doing on multiculturalism in focus. And the purpose of these reports is to take a deep dive into aspects of multiculturalism in Australia. And this particular report looked at experiences of belonging and social connection and civic participation amongst Australia's fastest growing migrant communities. So specifically that means the Indian community, the Pakistani community, the Nepali community, the Filipino community, the Chinese and the Iraqi communities. And so what we found was when we asked people about their sense of belonging to their local communities, that most people experience a real strong sense of connection and belonging to their local neighbourhoods. When I asked people why that was the case, the most common response was that they felt that they had social connections in their community. They had friendships, or even if they didn't have friendships, they had sense of interactions in the communities that were positive, where they felt welcomed and accepted. People smiled at them, people said hello, people offered to take their bins out in the morning when they were busy at work or things like that. So these social connections at a very grassroots community level was very key to their sense of belonging in their local neighbourhoods. When we asked then about their sense of belonging to Australia, that was a bit of a different story. There were some people who felt a really strong sense of belonging to Australia, and there were some people who didn't really feel like they belonged in Australia at all. When I asked them why that was the case, then people's responses were a lot more varied. There were a lot of factors which they felt contributed to feeling like they belonged. Things like visa status was one of them. Time in Australia was another. The extent of the experiences that people were having here in comparison to their previous countries and so on. And sometimes things such as adoption of cultural values were things that made them feel like they belonged to Australia. So there was one story I listened to of a woman from Pakistan who was telling me that she felt like she belonged in Australia because she had adopted the values of multiculturalism. And I said to her, "That's really interesting. Can you tell me more about that?" And what she said to me was, "Well, I've started eating Thai food." And I said, "Oh, that's great. Tell me more." And she said, "Look, in Pakistan, I never would have eaten Thai food. I just would never have had any exposure to the Thai community at all. But here in Melbourne, I've been eating Thai food, and therefore I know that I'm becoming more multicultural. And because of that, I know I'm becoming Australian."
What were the key areas examined in the study? And given the relatively small sample size, does it provide an accurate and meaningful picture?
Of course. So the study was what we'd call a mixed method study. We did 65 qualitative interviews, as you mentioned. We also looked at our mapping social cohesion data, which has more than 7,500 responses at the moment. And within those responses, we could take out the responses of those who belong to the cultural communities that were the focus of the study. So we could look at the interview data, and then we could look at the mapping social cohesion results, and we could see whether they were aligned and where there was divergence. And in fact, what we found was quite strong alignment between the interview results and the national survey results. And that gave us confidence that what we were seeing in the interviews had some validity and some generalization to the national group. So in terms of being a robust report, yes, qualitative interviews, you shouldn't take them necessarily as representative of a national or a larger sample size. But when we can put it together with broader survey data, then we can start to get a sense of, yes, we're seeing results that are holding true at a broader level as well.
Right. Now, the report says belonging tends to grow over time, but what factors influence this process, and how do issues such as discrimination and workplace experiences shape a migrant's sense of belonging?
Yes, that's right. So if we're talking about migrant sense of belonging, we have found that that does tend to increase over time. So those who are more recently arrived in Australia tend to have a less strong sense of belonging than those who have been here for a longer period of time. That sense of belonging tends to grow. And we can look at various factors underpinning that sense of belonging. For example, if we take the influence of social relationships, new migrants might have very few social relationships and they might not be very deep, but over time those social relationships grow and they make a stronger contribution to someone's sense of belonging. In terms of workplaces are very key to developing social connections. So what we found in this study was that migrants tend to have a broad and a very diverse range of friendships, so not necessarily only from their own cultural communities, but more broader than that with other migrants and other communities as well. And one of the key places where people are making those relationships and forging those connections is in the workplace. So for those who are struggling to get into the workforce, there are obviously economic and financial implications of that, but also social implications, which we don't always recognise the importance of having meaningful work for not only financial benefit, but also for the social outcomes as well. So discrimination is unfortunately a reality in Australia. We did find the individuals whom we interviewed had experienced discrimination since arriving in Australia. And we know from the mapping social cohesion data that there are a significant proportion of individuals who do report experiencing discrimination. So discrimination, if you understand belonging to mean membership of a group, discrimination effectively makes you feel excluded from the group, and it can, for that reason, erode your sense of belonging. So positive relationships are obviously essential to a sense of belonging and essentially the opposite to a sense, an experience of discrimination.
Did any findings challenge common assumptions about migrant communities?
I think so. I think, for example, the data that we gathered showing that migrants have strong and diverse social connections with a broad range of different of individuals from different cultural backgrounds, I think that's a challenge to sometimes perceptions that are out in the wider community. I think one of the things that really stood out for me was the sense of motivation and agency that individuals were showing once they came to Australia. So there were often many challenges that individuals experienced, but once they were here, they were putting every effort towards overcoming those challenges. They were proactive and they were taking initiative. They were looking for work. They were proactively inviting their neighbours around and giving them food and having meals with them in order to build those social relationships. So that agency and proactivity was very evident in people's experiences. And I think there's a real strong sense that people, when they make the decision to come to Australia, they want to belong. And so they are working very hard towards that.
So does the responsibility for belonging rest more with migrants or with the receiving society? What's your view?
I think with both, of course. There are individual factors involved in facilitating a sense of belonging. There are community level factors as well. And certainly there are a lot of positive findings around what's happening at a grassroots level in our local communities.
Right. I'm particularly interested in findings about women. So what factors might explain the particular high rate reported by women? 51%, your report says, found they were feeling, they had less sense of belonging.
Yeah, we're all particularly in experiences of discrimination. We found that women were disproportionately affected. And when you look, you kind of dig more deeply into that, women tend to have a less strong sense of safety as well during the day when they're out and about. I think that highlights the particular vulnerabilities of women in public spaces often. But we didn't delve into that too deeply in the interviews because it's a tricky kind of conversation to have with someone for them to share those experiences. But we can say from the broader data that sense of safety plays a big role in sense of belonging. If people don't feel safe, they're not out and about, they're not building those connections, they're not interacting in the broader community. So safety is always important. And safety obviously has connections with experiences of discrimination. If you feel vulnerable, then you don't feel safe.
So what's the key message of this report, Trish?
The key message of this report is that a sense of belonging is important for new migrants to Australia, and that the starting place for that is building it in local communities.
Thank you so much, Trish, for talking to us today.
और कार्यक्रम में आखिरी अंतराल का समय आ गया है जिसके बाद अमीन सयानी के साथ हुई अनीता जी की बातचीत सुनाऊंगी. तो बने रहिए SBS हिंदी पर, कहीं मत जाइएगा. वैशाली बस यूं गई और यूं आई. और मुझे जरूर बताइए कि भाई कोई गीत सुनना चाहते हो आज, तो भी 04397997667 ही हमारा नंबर है. आपके गीतों की फरमाइश के इंतजार में भी हूँ. जल्दी जल्दी जाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी आ सकूँ. ठीक है.
जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है. sbs.com.au/guide पर जाएं.
SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है. जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने. sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें. अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें. ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है.
ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है. SBS हिंदी पर आप सुन रहे हैं वृशाली को. और अब करते हैं चर्चा एक ऐसे साक्षात्कार की जिसे अनीता बरार ने रिकॉर्ड किया था 2013 में. इससे पहले आप इसके बाकी अंशों में सुन चुके हैं कि कैसे अमीन सयानी जी ने रेडियो की दुनिया में कदम रखा और कैसे शुरुआत हुई थी बिना का गीतमाला की. आज सुनते हैं इसी बातचीत का अगला भाग. आइए
SBS हिंदी पर, मैं हूं अनीता बरार. क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप का नाता रेडियो की वजह से बहुत पहले से ही जुड़ गया था? आइए जानते हैं उस इतिहास के बारे में. भारत में रेडियो के दुनिया के नामी नाम अमीन सयानी के साथ लिए गए इंटरव्यू के इस भाग में वो याद कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप के उस संबंध को और साथ में कुछ और भी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। 2013 में लिए गए इंटरव्यू का तीसरा भाग। अमीन साहब, आपने रेडियो के जरिए अनगिनत फिल्मी हस्तियों का परिचय अपने श्रोताओं को कराया, तो कोई ऐसा इंटरव्यू तो रहा होगा जो आपके लिए भी एक बेमिसाल अनुभव बना होगा?
भाई, मेरे जो दो फेवरेट इंटरव्यूज हैं वो है किशोर कुमार के।
जी,
किशोर से मेरी दोस्ती मेरे कॉलेज के जमाने से थी। उनकी एक साली सावा थी जो मतलब पहली बीवी रूमा की कजिन।
हाँ, जी,
जो कि मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और मेरे साथ ड्रामे भी करती थी, तो वो मुझे ले गई किशोर से मिलाने, तब से मेरी दोस्ती हो गई थी। और जब उनकी फिल्में कोई आती थी, पहली फिल्म थी दूर गगन की छांव में,
जी,
उसी जमाने से मैंने उनकी हर फिल्म की पब्लिसिटी भी की थी। लेकिन उन पुराने जमानों में हुआ ये कि गीतमाला में हर साल मैं एक कोई न कोई लेता था, या तो म्यूजिक डायरेक्टर्स या लिरिक राइटर्स या सिंगर्स, और उनके मैसेजेस देता था आज सालाना प्रोग्राम में। तो उस साल सिंगर्स की बारी थी और मैंने सबके इंटरव्यूज लिए, लता, रफी, आशा और मन्ना डे और मुकेश, तलत, हेमंत, मगर किशोर दा का गाना टॉप पर था और वही हाथ में नहीं आ रहे थे।
अच्छा जी।
तो बहुत मुश्किल से कोशिश की, मशीन भी ले गया वहाँ, मगर वो चकमा दे गए। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने कहा जाइए किशोर दा, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा रिकॉर्डिंग के लिए। उसके बाद करीब 12-18 साल मेरा ख्याल है उनसे मैंने कभी कुछ जिक्र नहीं किया, हालांकि दोस्ती थी, पब्लिसिटी के लिए वो आते थे। फिर एक बार एक मेरा प्रोग्राम था साथियों का, सितारों के साथ ही, उसका आखिरी प्रोग्राम होने वाला था। इत्तेफाक से किशोर दा मेरे स्टूडियो में आए, तो मैंने बाहर से कहा कि दरवाजे बंद कर दो। मैंने इनसे कहा कि किशोर दा, मैंने बाहर 4-5 पहलवान रखे हैं और उन्होंने कहा कि आपने अगर मेरा प्रोग्राम अब नहीं किया तो मैं वो पीट देंगे आपको। तो पहले तो घबराए बड़े डरपोक से, फिर जोर से हंसे, कहा बदला ले रहे हो? मैंने कहा हाँ बदला ले रहा हूँ किशोर दा, अब तो कर दीजिए। और उन्होंने बड़ा अनोखा प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा देखो तुम हमेशा बोर करते रहते हो, तुम चुप बैठो, मैं बोलूंगा और सबको बोर करूंगा। और फिर उन्होंने अपने आप पर मुकदमा चलाया।
अच्छा।
खुद जज बने, पुराने जो कैरेक्टर एक्टर थे तिवारी, उनकी आवाज निकाल के, बड़े अच्छे मिमिक थे किशोर दा, तो वो तिवारी की आवाज में जज बने और 3 किशोर कुमारों पर मुकदमा चलाया। किशोर जो बच्चा था
जी,
किशोर जो जवान है
जी,
किशोर जो बूढ़ा होगा।
ठीक।
और मेरे जीवन का वो बेहतरीन इंटरव्यू है, बहुत जबरदस्त। और एक बार और उन्होंने दादा बर्मन को श्रद्धांजलि दी थी जब दादा बर्मन का देहांत हुआ
जी,
तो वो भी बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू। ये दोनों इंटरव्यूज किशोर कुमार के मेरे जीवन के बेहतरीन इंटरव्यूज हैं।
एक बात बताता हूँ।
हाँ।
इससे पहले कि तुम अगला सवाल पूछो,
जी,
जी। ऑस्ट्रेलिया से तो हमारा बड़ा पुराना नाता है। रेडियो सेलोन जब शुरू हुआ ना 1950 के आसपास,
जी।
तो कैसे शुरू हुआ था वो?
हाँ।
वो हुआ ये कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान से गए, वो तो 47 में गए
जी।
और 49 के आसपास शायद सेलोन से भी गए। तो सेलोन से जब वो गए तो उन्होंने अपने सारे जो ट्रांसमिटर्स थे उसमें साउथ ईस्ट एशिया कमांड कहला जाता था माउंट बैटन का।
हाँ।
तो उनके जितने भी ट्रांसमिटर्स थे वो बड़े अच्छे अच्छे बड़े पावरफुल खूबसूरत ट्रांसमिटर्स वो उन्होंने सेलोन को दे दिए, दान कर दिए। तो उन पर सेलोन की सब कमर्शियल सर्विसेज शुरू हुई, इंग्लिश भी, सिंगलीज भी, तमिल भी, और सबसे बड़ी सर्विस हिंदी सर्विस। और उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया वॉज द मदर कंट्री ऑफ कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग। हमारे जो डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल सर्विस थे वो एक ऑस्ट्रेलियन थे, उनका नाम था क्लिफर्ड डॉड। بڑے غضب کے زوردار کچھ ملٹری ٹائپ کے انسان تھے اور بہت ہی ہنسمکھ بھی تھے, بہت کام اچھی طرح سے لیتے تھے سب سے, اور انہوں نے ایک جوش پیدا کر دیا پورے ریڈیو سلون میں. تو اور ہم لوگ جو بمبئی سے پروگرام بھیجا کرتے تھے وہ بھی بڑے متاثر ہوئے, بڑے پربھاوت ہوئے ان سے, اور ہم نے بھی دھوم دھام کرنی شروع کر دی.
بالکل, آپ کی دھوم دھام کی تو بات ہی الگ ہے.
پروگرام اب نہ بجنا یہ تو بہت زیادتی ہے.
آپ یقین جانیے امین صاحب, آپ کی آواز سے بھی وہی سب گونج رہا ہے.
اور دوستوں, میرے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کویتا ہے سرویشور دیال سکسینا کی, کیونکہ آج ہم نے چرچا اتنی پیاری کری ہے. سرویشور دیال سکسینا لکھتے ہیں, اس پیڑ میں کل جہاں پتیاں تھیں آج وہاں پھول ہیں, جہاں پھول تھے وہاں پھل ہیں, جہاں پھل تھے وہاں سنگیت کے تمام نرجھر چھر رہے ہیں, ان نرجھروں میں جہاں شیلا کھنڈ تھے وہاں چاند تارے ہیں, اور ان چاند تاروں میں جہاں تم تھی وہاں آج میں ہوں, اور مجھ میں جہاں اندھیرا تھا وہاں انت آلوک پھیلا ہوا ہے, لیکن اس آلوک میں ہر کشن ان پتیوں کو ہی میں کھوج رہا ہوں جہاں سے میں نے تمہیں پانا شروع کیا تھا. ایسا ہی کچھ ہوتا ہے پریم بھی, اور ایسا ہی کچھ ہوتی ہیں یادیں بھی, کیونکہ یادوں کی ایک تاثیر ہوتی ہے, آپ ان میں وہاں جاتے ہیں جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی. امین سیانی سے ہوئی اس بات چیت کی مجھے آشا ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, اور اسی کے ساتھ آپ سے ودا لے رہی ہوں, پھر ملاقات کروں گی, تب تک کے لیے اپنا بے حد دھیان رکھیے گا.
ایس بی ایس ریڈیو سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کا دھنیواد. ہمارا پورا کاریکرم آپ کیسے سنیں اس کے لیے sbs.com.au/hindi پر جائیں.